सिर के 100 टुकड़े हो गए। प्राणों के साथ यथासुर की इंद्रियां ये सब बाहर निकल आई, तमाम इसकी शक्ति इंद्रियां इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई, गोलक गोलक रह गए। अब ये हो गया, अब जो अंदर सारे गोवत्स गाय के बछड़े और बालक जो मुर्दे के समान मतलब प्राय पड़े हुए थे, उन पर श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, अमृत श्रावणी दृष्टि। बस वो अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि पड़ने की देर थी कि सारे बालकों में और बछड़ों में नया जीवन आ गया, सबके प्राण आ गए। तो अब भगवान क्यों रुके वहां पर, तो बाहर निकल गए वो सब बछड़ों को बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ कि ये जब उसका सिर फटा और उसमें से लोगों ने देखा सबने कि बड़ी सुंदर तेजस्वी ज्योति निकली और उसमें इतना बड़ा तेज था और इतनी उसकी प्रभा थी कि वो दशों दिशाओं को उसने प्रभावित कर दिया, प्रभा फैल गई। और अभी ये अंदर थे, ये तो उन सारे बछड़ों को बच्चों को जीवित करके उनको निकाल के फिर निकलेंगे ना, और वो तो ब्रह्मरंध्र फटते ही बाहर निकल गए। तो वो जो अद्भुत ज्योति थी उस ज्योति से दशों दिशाएं भर गई। तो पीना ही भोगोचित मद्भुतम महत ज्योति स्वधामना जुड़े दिशो दिशा प्रतीक्ष थी वस्तुत निर्गमन विवेश तस्मिन विशदान दिवकसाम। वो परम उज्ज्वल महान ज्योति अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को आयोकित करती हुई बाहर आकाश में जाकर स्थित हो गई, खड़ी रह गई। देवताओं ने देखा ये बड़ा आश्चर्य है, सब देवता देख रहे थे, विमानों की कतार लगी, ये बड़ा आश्चर्य है, ये क्या निकला और निकल के अभी तक ये विलुप्त नहीं हो रहा है, जिन का तुम्हें तेज खड़ा है आकाश में, क्या बात। जब सब बछड़े सब बालक निकल गए बाहर, तब स्वयं श्याम सुंदर मुरली मनोहर्ष वही वैसा का उनके रूप में कोई फर्क पड़ा है नहीं, वही मयूर मुकुटधारी वंशीधर भगवान श्याम सुंदर निकले अंदर से। निकल के जो ही बाहर आए तो आकाश में जो ज्योति स्थित थी वो ज्योति उनकी ओर चली और उनके चरणों में समा गई। जैसे बिजली बादलों में समा जाती है, निकस ज्योति अंबर ते गई दामिनी सी फिर ठाड़ी भई, जब लग नंद सुवन गोविंद बछरा अरु बज बालक बंद, दृष्टि करी सींच जवाई ले आए बाहर ए भाई, तबलों रही गगन में ज्योत सब दिश जगमग जगमग होत, उल्का जी तह ते उल्कानी आनंद भरी हरि मांझ समान। इस प्रकार ये ज्योत जो है ये भगवान में समा गई। तमाम लोगों ने अब महाराज कोलाहल मचा दूसरा। अब वो वहां तो कम से कम यहां तो आनंद की खबर तो लोग जल्दी देते राम राम मिलने के लिए, ये बड़े शोक का समाचार तो पहुंचने में भी देर लगी है, तो पहुंची तो अब शोक में तो रो रहे तो क्या करें, आनंद तो मतवाला बना देता है और क्रोध सारी मत ये शोक सारी मत्तता को हर लेता है। तो बिचारे पड़े पड़े रोने लगे इधर और उधर देवलोक में, तो महाराज अब ऐसी धुंधुबियां बजी और ऐसा हुआ कि बस पूछिए नहीं। तो देवलोक में तथो उत्कृष्टा सुकृतो कृतार्हणम पुष्पैश्वरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतै सुगा वाजधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जय निस्वनैर्गणाः। वो लिखते हैं आनंद वृंदावन चंपूकार, ढेरी भांकार रावही पटु पट घना घात संघात घोरै उच्चंदै डिंडमानां ध्वनिभिरविरलैः दुंदुभी नाम प्रणादय गानयर गंधर्व विद्याधर तुड़ग प्रेयसी नाम पुनीना मुनीनाम स्त्रोत्र शब्दांतरेश क्षण में बजरा स्वजनस्ते बभु। कहते भेरी का भम 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 वो बड़े जोर का शब्द हुआ, नगारे बजने लगे और बहुत जोर से सब बाजे बजे, धुंधुबियां बजी और गंधर्व विद्याधर किन्नर ये सभी शामिल होकर के आज आप वो नाचने और गाने लगे और उद्दंड नृत्य करने लगे हर्षोन्मत्त होकर। तो इतने जोर का ये हर्षोल्लास जनित ये ध्वनि हुई कि सारा देव जगत बहरा हो गया। सुनाई लगे कौन क्या गा रहा है अलग अलग, सभी गावे और सभी नाचे सभी बजावे तो अलग अलग सुनने की शक्ति नहीं रही कि किसी में भी शब्द ग्रहण करने में उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं ये मानो सर्वथा कुंठित हो गई, विलुप्त हो गई और सारी देव नगरी देव मंडल इस प्रमोद प्रवाह में इस सागर में डूबकर प्रमत्त हो उठा। मत्ते वासी अमर नगरी सागर ये प्रमोदयी है। अमरावती का ये आनंद केवल अमरावती में नहीं रहा, ये स्वर्गलोक से ऊपर पहुंचा, जनलोक में गया, महरलोक में गया, तपलोक में गया और ब्रह्मलोक तक में जा पहुंचा। तो ब्रह्मा जी महाराज उस समय अपने कुछ सोच रहे थे, सजन विजन की बात, कुछ वेदों का नया नया अर्थ सोच रहे थे, जब उनके कानों में ये देव जगत की और बड़ी तुंगल ध्वनि पहुंची तब वो देखने क्या हो गया, ये सब सारे देवता आज कोई नई बात हो गई क्या, ये आज देव जगत में कैसे ये कोलाहल आनंद कोलाहल हो रहा है। तो अब लीला शक्ति भगवान की, उनके मन में भी इच्छा हो गई कि चलो देखें क्या हो रहा है, बड़ा आश्चर्य मन में। तो देवताओं का ये आनंद घोष सुन करके ब्रह्मा जी का मन चंचल हो गया, चलो देखें। ये सुना कि ये तो तमाम ऋषि मुनि सब स्तवन कर रहे हैं, तमाम चारों ओर स्तवन की ध्वनि उठ रही है, बाजारो सब जय जयकार, सब जय बोल रहे हैं, जय कन्हैया लाल की जय, जय श्याम सुंदर की जय इत्यादि, तो संगीत स्वर हो रहा है ये महामहोत्सव मंगल ध्वनि। और बोले ये इतनी दूर कहाँ हो रही है, सुनाई पड़ती नजदीक सी, क्योंकि सारे लोग नाच उठे ना। तो ब्रह्मा जी स्थिर नहीं रह सके, तुरंत यहां से उतरे और उतर करके वो तो समर्थ रहे जहां पर ये लीला हो रही थी वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर की अघासुर उद्धार लीला। अघासुर के सारे अघ का नाश करके उसको परम पुण्य प्रेममय बना देने की लीला जहां हो रही थी वहां ये आ पहुंचे। उस समय ये पहुंचे कि जिस समय वो ज्योति बाहर खड़ी थी, उसके पहले आनंद कोलाहल तो हो गया ना, उसका सिर फटते ही। तो ये ज्योति जो बाहर खड़ी थी और बाहर भगवान आए नहीं थे, उस समय ही ब्रह्मा जी आनंद कोलाहल को सुन कहने में तो देर लगी, हो गया बहुत जल्दी काम, देव जगत में बहुत जल्दी होता है। तो आ गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये ज्योति में प्रवेश कर गई। तदभुतस्तु तो सुभाष जगीतिका जया जनकोत्सव मंगल स्मान श्रुत्वा स्वधामनुं तिज आगतु चराद दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। ये जब देखा कि भगवान के चरणारविंद में और वो अघासुर के अंदर से निकली हुई आत्मज्योति प्रवेश कर गई, तब बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को कि भाई देखो जिसका जीवन बीता दूसरे को दुख देने में ही, जिसके जीवन में कोई पुण्य नहीं, केवल पाप पूर्ण जीवन, जिसका नाम ही पाप है। अब ये श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही गए, पर जो गति योगेंद्र मुनिन्द्र सुरेंद्रों को भी नहीं मिलती वो दुर्लभ गति प्राप्त हो गई। ये ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य की कोई बात भी नहीं, ये कहते हैं सुखदेव जी महाराज, मृतक विचित्रम मंजार भया मायम परावराणाम परमस्य वेदतः अघोपित यत् स्पर्शन धूत पातक पापात्म साम्यम तथताम सुदुर्लभम। अरे भाई, एक बार सच्चे रूप में जिसके मन में भी भगवान आ जाते हैं उसको भी परम गति प्राप्त हो जाती है, न मालूम कितनों को आज तक हो चुकी। अपने मन की भावना से कल्पित भगवान की मानस मूर्ति क्षणकाल के लिए भी यदि किसी के हृदय में प्रादुर्भूत हो जाती है तो वही उसको दुर्लभ गति दे देती है। माने भगवान का मन में आना, ध्यान में भी, चिंतन में भी, ये परम मंगलमय है। इसीलिए ये कहते हैं महात्मा लोग कि कैसे भी किसी भाव से भी भगवान को मन मिलाओ, बोले भगवान का चमत्कार नहीं मिला, भगवान का ज्ञान नहीं मिला, ऐश्वर्य नहीं मिला, बोले न सही, कैसे भी उन नाचने वाले, गाने वाले, खेलने वाले श्याम सुंदर को मन में लाते रहो अपनी कल्पना से, अपनी भावना से। तो ये अगर मन में आने लगेंगे स्मृति के रूप में भी, चिंता के रूप में, चिंतन के रूप में भी, तो अशेष मंगल करने वाले। तो जिनका क्षण भर का ध्यान ही ये दुर्लभ गति दे देता है वे भगवान कृष्णचंद्र, जिनका श्री विग्रह परमानंद घन है, नित्य चिन्मय है, वे नित्य शुद्ध परमानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ये जब स्वयं जिसके मुख विवर में प्रवेश कर गए, क्या उसके लिए कोई गति बाकी रह जाती है? तो इसमें क्या आश्चर्य है, जिसने भगवान को मुंह में रख लिया और जिसने भगवान के को मुंह में रख करके अपने प्राण में उछावर कर दिए, उसके लिए कौन सी गति बाकी रह जाती है? मनोमयी गति जब पार देती है, सकल यदंग प्रतिमान तराहिता मनोमयी भागवतिम ददौ गतिम सोम नित्यात्म सुखानुभूत भी विदुष्ट मायोन्तर्गतो हि किम पुनः। वो अगर अंदर जा करके जो अखिलेश परावर स्वामी सकल अनियंता अंतर जानी माया मनुज तोक तन धारी करो कर्म निज जन हितकारी नहीं आचर्ज मानी अव कबहू भयो अघासुर पावन अजहू महाअघी पावर सब भांति परस जंगल सुगत सुहाती प्रतिमा जासु मनोमयी को ध्यान करें कैसो किन हो लह सुगत सो बिनहि प्रयासा कंचन बप सुत तो अनयासा सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता सुप्रख्यात तो कसलिकंता कासवंग परसत भा पावन महाअधि यह देव सतावन तो आचरज कहा यही माही नाम लेत अघकूट नसाही। तो अब इसके बाद जो घटना और होगी वो क्या हुई कि ये ब्रजेंद्र नंदन का ये लीला अभिलाष सचमुच उस अजगर के देह को जिस प्रकार की उन बच्चों ने उत्प्रेक्षा की थी उसी प्रकार से उसको क्रीड़ा भूम बना लिया। राजन नादगरम कर्म शुष्कम वृंदा बने विभूतम बहु कसाम बहुचथम बहुआ क्रीड गवरम। वो पर्वत की गुफा के समान सूख गया ना, जब उसका साल भर के बाद होगा, अभी तो साल भर के ये बच्चे सब सोए रहेंगे दूसरी लीला में। तो वो सूख करके सचमुच पहाड़ की कंदरा के समान इनके खेलने की जगह बन गया। तो ये साल भर के बाद, अभी तो साल भर दूसरी लहर होगी, साल भर तक पता ही नहीं लगेगा घर वालों को, यशोदा मैया को, कि ये क्या लीला घास की हुई, ये दूसरी लीला होगी। तो इस प्रकार से वो देखते रहे। ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज, उनको आश्चर्य हो गया और मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि ओहो, ये कितने भक्तवत्सल हैं और कितने ये निजन प्रिय हैं। तो देखो ना, छोटे से बालक बन करके और ये विहार करते हैं और इनके साथ ये बच्चे खेलते हैं, और देखो ना अघासुर का इन्होंने किस प्रकार से उद्धार कर दिया। अभी संदेह नहीं हुआ, अभी तो मन में महिमा जागी। और लोग कहते संदेह तो पीछे ही नहीं हुआ इनको, ये इनके मन में और नई लीला देखने का उत्साह प्रकट हो गया, इसलिए इन्होंने, इनके मन में शंका पैदा कर दी गई। शंका वंका ब्रह्मा जी कुछ हुई नहीं। तो खैर, ये अब कन्हैया भैया बाहर आ गए। अब कन्हैया भैया के साथ अब मिलने लगे, सब गले लग लग करके बड़ाई कर रहे, तू कन्हैया भैया तू है तब क्या है। अब बार बार पूछे, हम लोग तो गए अंदर, तो भाई हम लोग तो मर गए और तू गया अंदर। हम बोले गया दिखाई, तू बोले तू अंदर गया तो तू जीता कैसे रहा, तू मरा कैसे नहीं, हम सब मर गए। वो तो ऐसी भैया भयानक आग की लपट थी अंदर जहरीली, कि हम तो सब के सब जल गए। और एक बात ही बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ, फिर अब बेहोश हो गए, पता ही नहीं लगा। तो बता भैया, अरे खेलते खेलते हम सब जल चुके, तो तू जला ही नहीं या जल करके जी गया, क्या हुआ बता तो सही। तो भगवान ने कहा कि अरे भैया, मुझको एक मंत्र मालूम है, सत सचमत्कार विशेष ये नागदेनो गंध मात्रादेन गता सवो भगता सवोत्सवा ये सम्मुलसित जीवना भवंती थे। कहा देखो भैया, हो मैं जहर की दवा जानता हूं, मेरे पास एक ऐसी दवा है कि उस दवा के लगते ही सांप सारे के सारे चूरे चूर, सांप चूर चूरम चूर हो जाते हैं, वो कोई भी रहता ही नहीं। और वो ऐसी दवा है मेरे पास कि जिसके जिनके प्राण निकल जाते हैं, वो अगर उस दवा को सूंघ ले, कहीं उनको सुंघा दिया जाए, तो उनके भी प्राण आ जाते, नया जीवन प्राप्त हो जाता है भैया। तो बोले जब ऐसी दवा तेरे पास है तो फिर हम किससे करेंगे, फर्क दवा तेरे पास है और करेंगे सब कुछ। अब उनके मन में ये नहीं आया, बच्चों के बड़े सरल शिशु हैं, कि इसमें क्या क्या दूर बात कह गई, ये इसमें कितना रहस्य भरा है भगवान के इन वचनों में। ये बेचारे बच्चों को सरल समझ में कोई दवा होगी इसके पास, कहीं से ले आया होगा, किसी ने दे ले दी होगी दवा, तो सचमुच ये दवा से ही खुद जी गया और दवा से इसने हम लोगों को जिला दिया। वो ऋषि कहते हैं, बड़ा सुंदर टीकाकार कहते हैं, भाई और दवा क्या, एक तो इनका नाम ही ऐसी दवा है कि जो निश्चेष्ट प्राणी हो गए हैं जीवित रहने में, जीवित रहना क्या है, भगवान की ओर लगना है, जीवित रहना ही तो मुर्दा है। मुर्दार जीवन जिनका है, जिनकी जिंदगी मुर्दा हो गई, जो विषयों में तमाम प्रलिप्त हो गए, ऐसे लोग भी अगर श्री कृष्ण के नाम का अमृत पी लें, सूंघ लें कहीं, तो उनकी सारी ये माया जनित जो जड़ता है, ये तुरंत नष्ट हो जाती है और वो जी जाते हैं। संसार सर्प संतुष्ट नष्ट चेष्टे के भेषजम कृष्ण रिवैष्टम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। राम नाम जपता अंकुतो व्यम सर्व ताप शमय के भेषजम, दवा है ये। तो सरलमती बच्चों को ये सब बात कहीं जाए ना जी कि कोई कोई नाम के महिमा है या रूप के महिमा है या इनके ज्ञान की महिमा है।
शक्ति है वो हमेशा सावधान रहती है, वो सखाओं को माताओं को गोप सुंदरियों को निरंतर प्रभावित रखती हैं मधुर भाव से। तो उनके मन में बच्चों के मन में ठीक विशुद्ध सत्य भाव की प्रेरणा से यही आया सचमुच कन्हैया भैया के पास औषधि है जिससे ये जी गया और जिसके कारण से ही औषधि कहीं लगा दी होगी तो अगर सुर का सिर फट गया। और तो भाई भैया तेरी जय हो, कन्हैया तेरी जय हो, और तेरी दवा की जय हो जिसने असुर को मार दिया और अब वो गले लगने लगे सब के सब। अब बोले भैया आप देखो बहुत देर हो गई, आज से यहाँ खाने पीने का विचार करके आए थे, मैया से सब कह सुन कर आए और अतिक्रम हो गया। तो भगवान ने देखा तो ये इधर तो तैयारी में लगे। उधर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ब्रह्मन कालांतरकृतम तत्कालीनम कथा भवेत यत्कौमारे हरिकृतम जगुपौंडकृतभ। ये कह दिया उन्होंने, सुख जी ने कहा, सुखदेव जी ने सुनाया इनको कि इत्थम द्वजा यादव देव दत्त श्रुत्वा स्वरातुश्चरितम विचित्रम प्रत्यक्ष भूमिपतिव पुण्यम भैया सकृत नगृहित चेता। ये जब ये कहा कि ये भगवान की बड़ी विचित्र सुंदर लीला शंकाजी ऋषियों से कहा सूत जी ने कि भगवान यदुवंश शिरोमणि कृष्ण जिन्होंने परीक्षित को जीवन दान दे दिया था, उन्होंने जब ये अपने संरक्षक और जीवन सर्वस्व भगवान का ये विचित्र चरित्र लीला उनका सुना तब सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया। असल में भगवान के अमृत में जो लीला है ये परीक्षित के चित्त को बार बार अपने ओर खींच रही और वश में कर रखा उसने, उस लीला से मन हटता नहीं। तो परीक्षित ने ये पूछा कि महाराज आपने जो कहा कि ग्वाल बाल ये पांचवें वर्ष की लीला और छठे वर्ष में आकर के साल भर के बाद ये कही, तो बताइए कि साल भर में क्या हुआ, ये दूसरे समय में आज की लीला साल भर के बाद व्रज में प्रकट हुई, इसका क्या रहस्य है बताइए। तद्रोही में महायोगिन परम कौतूहलम गुरु मूल में तो धरे रे व माया भूति नान यथा। इस रहस्य को जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है, आप कृपा करके बतलाइए। तो अवश्य इसमें भगवान की विचित्र अनंत जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से घटित कोई न कोई लीला तो होगी ही, तो वो लीला क्या है ये आप बताइए। फिर वो अपनी बड़ी नम्रता के साथ अपना अनधिकारीपन बताकर अधिकारीपन प्रकट कर रहे हैं, बड़ी धन्यतमालो के गुरु की क्षत्र बंधव जब पिबानो मुस्तत्पुण्य कृष्ण कथामृतम। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव हम तो नाम मात्र के अपराधी क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण सेवा से हम लोग विमुख हैं, पर जो भी हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके मुखार बिंद से मुख कमल से ये परम पवित्र श्री कृष्ण लीला अमृत का जो झरना बह रहा है झर रहा है इसलिए हमें पान करने को मिल रहा है। महाराज ये आपकी कृपा है, हमारा हमारी कोई योग्यता नहीं। तो सूत जी बोले, इत्थम स्म पृष्ठ सतवादरायण सत्मारिता अनंतरता अखिलेन्द्रिय पिछड़ा लब्ध भद्री सनई प्रत्याह तम भागवतोत्तम। सूत जी बोले कि सोनक जी जब परीक्षित ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने और अगली सारी लीला उनके सामने आ गई।
लीला का चिंतन हो गया और ध्यानस्थ हो गए, समाधि लग गई उनकी, सारी इंद्रियां अंतकरण ये विभिष होकर के भगवान की लीला का स्मरण होते ही और उसमें लग गए, खिंच गए सब, सारी इंद्रियां मन खिंच गए उसमें। इन्होंने परीक्षित ने देखा कि यहां तो पूछ रहे हैं थोड़ी, इनको तो समाधियां लग गई, कहने तो दूर रहा, जो कुछ कह रहे थे सो और बंद हो गया। अब सुखदेव जी की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, शरीर पुलकित हो गया, समाधि के बाद ये जो अवस्था हुई, शरीर पुलकित हो गया और रोमांच हो आया, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, विचित्र अवस्था उनकी हो गई। तब परीक्षित ने कहा, महाराज जरा चेत करिए। तब उन्होंने बड़े श्रम से, बड़े कष्ट से, किछरात हटना नहीं था मन वहां से, पर बड़ी मुश्किल से, कठिनता से उन्होंने अपने मन को वहां से हटाया, बाह्य ज्ञान हुआ। तब ये लीला का वर्णन करने लगे। ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। नारायण नारायण। तो अब 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। सुखदेव जी बोले, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यूतन नूतन शिष्य शिष्य कृष्ण श्रृण्वन्नत कथा मुहु सतामयम सार भृताम निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि कृतक्षणम नव्य वदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। सुनु स्वागहितो राजन्नति गुह्यं वदामि ते ब्रूस्निर्दश शिष्यस्य गुरु गुह्यमप्युत तथागवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सर्वपलमानीय भगवान इदम् अब्रवीत। ये अब सबके सब पुलिन पर आ गए और परीक्षित जी महाराज कहते हैं, अब यहां इन्होंने देखा गोस्वामी महाराज ने कि गंगा के तट पर जहां ये कथा हो रही थी वहां भी ये नियम ही है कि कथा के बीच बीच में कीर्तन ध्वनि होनी चाहिए। अगासुर मोक्ष का जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो बड़े जोर का वहां कीर्तन होने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों में प्रेम जाग गया और सभी लोग प्रेम में मत्त होकर के भगवत रस में डूब गए। तब इन्होंने देखा कि अब ये फिर अधिकारी बन गए, माने भगवत लीला कथा के अधिकारी कौन है, जो प्रेम रस में निमग्न है वो, जो शंका करने वाले, कौतूहल से सुनने वाले, हंसी मजाक के लिए सुनने वाले, समय काटने के लिए सुनने वाले और तर्क से सुनने वाले, इनको भी सुनने से लाभ होता है परंतु ये वास्तविक श्रवणाधिकारी नहीं है। श्रवणाधिकारी वो है कि जिस लीला का वर्णन है उस लीला के रस में जिनका मन निमग्न हो जाता हो, जो उसमें परम दुर्लभ भगवत रस का आस्वादन कर पाते हों, वे जो तो ये सबका नियमन करने वाली है ये कथा, भगवान की लीला कथा। जो नहीं समझते हैं वे भी सुनकर के प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके अधिकारी कौन हैं जो स्वयं लीला सुनने के लिए अत्यंत व्यग्र होते हैं। तो ये सारे के सारे वहां सुनने वाले श्रोता वो अधिकारी और परीक्षित महाराज तो महान अधिकारी। तो अब प्रक्षित महाराज का लीला का परम आग्रह देखकर उन्होंने अपने ध्यान को छोड़ा और बोले, महाभाग भागवतोत्तम, ये दो बार संबोधन किया। तो इससे सुखदेव का ये कहना है कि महाराज परीक्षित, तुम्हारे समान भाग्यवान जगत में कोई नहीं। अब सांप डस गया, मरने को बैठा है, घर छूट रहा है, राज्य छूट रहा है, और ये कहते तुम महाभाग हो। कोई विषयी आदमी सुने इसको तो बोले ये महाभाग हो। किसी किसी मरते आदमी कहे कि तुम महाभाग हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। तो लड़ पड़े आदमी, बोले हम तो मर रहे हैं और ये कैसा भाग्यवान है। तो कहा भाई, तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं। क्यों भाग्यवान कोई? पहले की बात याद दिलाई कि माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में मर चुके थे। लोगों को बड़ी साधना के बाद दर्शन होते हैं, पर तुम्हें तो गर्भ में दर्शन हो गए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम जब माता के गर्भ में रहे उस समय, और तुमने चाहा भी नहीं कि हमको दर्शन हो, कहां तुम्हारे में ज्ञान था। तुम तो वहां मृतवत हो चुके थे ब्रह्मास्त्र से। तो उस समय उधर में प्रवेश किया भगवान ने स्वयं तुम्हारी माता के, तुमको जीवित किया और तुमको वहां पर अपने दर्शन दिए के कृतार्थ किया। तो तुम्हारे समान कौन भाग्यवान? और इसके बाद परम सौभाग्य यह है कि भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जिसके मन में उत्साह, उल्लास और उत्कंठा पैदा हो जाए, विषय वार्ता सुनने के लिए सब लोग लोलुप हैं, भोगों की बात, धन की बात, विलास की बात, इंद्रियों के विषयों की बात, ये सबको अच्छी लगती है और सभी लोग समुत्सुक रहते हैं, परंतु वो भाग्यवान है। भगवान को छोड़कर भोगों में लगे वो हैं अभागे, और वे हैं नरक रूप। क्यों नरक रूप हैं? कि नरकों का सामान वो इकट्ठा करते रहते हैं अपने अंदर संस्कार रूप से, और उनके आसपास रहने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले भी नरकों में जाने के लिए तैयारी करने लगते। भोगों की बात, और किसी प्रकार से बोले अमुक ने ये कमा लिया, उसके पास इतना रुपया हो गया, उसके पास इतना आराम हो गया, चलो हम भी वैसे ही बने। तो कैसे बने? बोले वैसे ही काम करते अपने बने। तो जिन नरकों का संग्रह करके कोई संसार के भोगों को प्राप्त करता है, उसके संग से उसी प्रकार के नरकों का संग्रह करने में मनुष्य लग जाता है, तो वे स्वयं अभागी और दूसरों को अभाग देने वाले। वे सुखदेव जी ने कहा, तेमर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, वे जगत में कितने भाग्यवान चाहे कहलावें, वे हैं वास्तव में अभागे, और हैं वे नरक रूप। खुद जलते रहते हैं रात दिन, लोग चाहे उनको समझें बड़े सुखी हैं, पर उनका जो अंतर्दाह है, अंदर की ज्वाला, ये भटकती रहती है। और जो उनके पास आके बैठते हैं, उनका भी जलना शुरू हो जाता है। अच्छा आदमी भी जो साधक है, वो अगर भोगियों के पास रहने लगे तो भोगियों की अंतर ज्वाला उसके अंदर आ जाएगी और वो भी जलने लगेगा। संतोषामृत जो उसका है वो सूख जाएगा और विषय कामना की आग उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। इसलिए कहा है कि भाई, किसी प्रकार से भी भोगी का संग न करे। भोगी का संग बड़ा डराने वाला। तो तुम महाभाग हो, तुम्हारे मृत्यु काल में ये संग मिला, इतने इतने तुम्हारे आसपास सब महात्मा बैठे हैं और तुम्हारे अंदर भगवत गुणगान, भगवान के रहस्य को जानने की, लीला कथा श्रवण करने की तुम्हारे मन में आकांक्षा पैदा हो गई, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। तो भगवान की लीला कथा सुनने जानने की जिसके मन में उत्कंठा पैदा हो जाए, इसमें जिसको रस आने लगे वो भाग्यवान। तो भावादेश में सुखदेव जी ने कह दिया, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, तुम बड़े भाग्यवान हो। तो दूसरी बात क्या कही, तुम भागवतोत्तम हो। भागवत माने भक्त, पर भागवतोत्तम माने जो भक्तों में श्रेष्ठ, जो श्रवण कीर्तन आदि का अनुष्ठान करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, वे भक्त हैं, भागवत हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है और उस प्रेम प्रबल हृदय को लेकर के भगवान को अपना मानकर जो उनकी लीला कथा सुनने में ही समुत्सुक हो जाते हैं, उनकी बात को सुनाता रहे, अपने प्रियतम की कोई बात सुनाता रहे, उनकी चर्चा करता रहे, बस ये जिनको अत्यंत प्रिय होता है वो है भागवतोत्तम। वे भागवतों में श्रेष्ठ हैं। उनसे कोई ये कहे कि भाई तुम क्षण काल के लिए, आज क्षण के लिए तुम भगवान को भूल जाओ और तुमको हम मुक्ति भुक्ति सब दे देंगे, 14 लोगों का तुमको वैभव दे देंगे, तो वो नहीं मानते। त्रिभुवन विभव ये तभी थी, त्रिभुवन का वैभव उन्हें प्राप्त हो और कह दे कि तुम जरा सी देर के लिए भूख को याद कर लो भगवान को छोड़ करके, तो वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए। तो हम तो रात दिन भोगों की स्मृति करते हैं, भोगों की स्मृति उन भागवतोत्तमों के तो मन में उदित नहीं होती, उनके मन में तो कभी भोग आते ही आ सकते नहीं। पर हम रात दिन भोगों में रहते हैं, भोगों से अलग हो सकते नहीं, ये हमारा उनका बड़ा भारी अंतर है। तो ये सुखदेव जी ने कहा कि तुम भैया भागवतोत्तम हो, तुम्हारे समान भागवतोत्तम जगत में कोई नहीं, इसीलिए ये तुम्हारा साधु प्रश्न है। जितने और प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न उत्तम प्रश्न हो सकते हैं, तत्व की बात जानने का प्रश्न भी बड़ा ऊंचा प्रश्न, पर प्रेम प्रबल हृदय से पूछा हुआ भगवान की लीला कथा का जो प्रश्न है ये साधु प्रश्न है। तो सुखदेव जी महाराज परम शिरोमणि इन्होंने भागवतोत्तम और भागवत महाभाग कह करके परीक्षित का अभिनंदन किया और कहा भाई ये गुण ग्रहण करने का है, भागवतोत्तमों का ये जो परम ये महत्वपूर्ण जो स्वाभाविक गुण है ये गुण ग्रहण करने का है। असत भावना को लेकर के लोग सब मस्त रहते हैं और कोई कोई यदि असत को त्यागता भी है तो सत रूप में किसी तत्व के पीछे लग जाता है, ज्ञान योगारी साधनानुष्ठान करता है या कभी भक्त बनता है तो वो केवल कीर्तन आदि में रहता है, वो बड़ा सुंदर है, ऐश्वर्यमय भगवान को भजता है। तो वो भगवान के ऐश्वर्यमय धाम को प्राप्त करता है, पर वो भी सारग्राही नहीं है। सारग्राही कौन है, जो वास्तव में भगवान का ही हो रहता है, उसके सिवा उसके मन में कोई आकांक्षा, कोई ममता, कोई आसक्ति पैदा नहीं होती, केवल यही चाहता है कि हमें सुनाया ही करो बस। इसलिए भक्तों ने जहां जहां पर भगवान से मांग की है वो दो ही बात की मांग की है, आपका स्मरण बना रहे और आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, बस। न मुक्ति चाहिए और न कोई और चीज चाहिए, न सद्गति चाहिए, आपका स्मरण बना रहे और आपके भक्तों का संग मिलता रहे, जिससे आपकी बातें सुनने को बराबर मिलती रहे। ये जो श्रवणोत्सुकता है, ये इससे क्या होता है, बड़ा सुंदर इसमें ये फल होता है कि भगवान के लीला कथा से मन भर जाता है। ये संस्कार जो हमारे मन के है ना, ये संस्कार सारे के सारे विलुप्त होने बड़े मुश्किल है, तो लीला संस्कार भर जाए, इसलिए बड़ा सीधा साधन है कि जैसा मन में आवे भगवान की लीला का चिंतन करते रहो। भगवान सत्य हैं, तो उनकी लीला भी सब सत्य है। अपने मन से जो भी चिंतन करो भगवान का, जिस लीला का भी जैसे भी, भगवान ठीक ठीक सत्य रूप में वैसे ही बन करके और प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो है ये सार ग्रहण है, और इसमें जब लीला गुण श्रवणादि में जब आसक्ति हो जाती है, तब तो उसका भाग्य बड़ा खुल जाता है। दूसरी बात सुहाती नहीं, दो बात होती है उसमें, दो बात होती है भगवत लीला कथा में जिसकी रुचि होती है, उसमें दो बातें प्रकट होती हैं। ये अपने अपने हृदयों में देख लें है कि नहीं। दूसरी चर्चा श्रवण करने से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं सुहावे, जग की बातें जलवर की चर्चा सहती, दूसरी बात सुहावे नहीं। कोई दूसरी बात करने लगे तो शीरवान कुछ उसे कहे नहीं, परंतु उसका मन वहां से भगना चाहे, कान में दूसरी बात क्यों पड़े। और भगवत लीला कथा श्रवण में आत्यंतिक और एकांतिक रुचि, जगत चर्चा श्रवण करने में नित्य विरक्ति, और भगवत लीला कथा श्रवण करने में आत्यंतिक अनुरक्ति, ये जब हो जाए तब पता लगे कि इसके मन में लीला कथा श्रवण का सौभाग्य पैदा हो गया इसके जीवन में। तो इस समय परीक्षित को न भूख लगती है न प्यास लगती है, और परीक्षित लीला कथा सुनने के लिए समुत्सुक। तो सुखदेव जी महाराज परम शिरोमणि, इन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो ये वास्तविक सारग्राही हो, कूड़े करकट में तुम्हारा मन नहीं जाता, सार ग्रहण करना चाहते हो, इसीलिए तुम ये श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए पूछ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मन में श्रवण की आकांक्षा निवृत्त नहीं होती, और प्रतिक्षण सुनने का तुम्हारा चाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जो श्रवण में लीला कथा श्रवण में जो दूसरी बात बीच में मन में आती है ना हमारे, इसका अर्थ यही है कि कूड़े करकट में हमारा मन अभी जाता है, हम उसमें लगे हुए हैं, नहीं तो दूसरी बात अच्छी न लगे। उसी की चर्चा, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन तत्परस्परम कथियम तस्मा नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतोष, उसी में प्रीति, उसी में निरंतर रमे रहना। तो परीक्षित जी से बोले सुखदेव जी कि भाई तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है, ये आगे आगे रहस्य खोलते चले जा रहे हैं ना। लीला कथा का रहस्य उनके सामने नहीं कहा जाता जो संदेहवादी, उनके सामने भी कहना नहीं चाहिए जो भक्त नहीं है, सुनना नहीं चाहते उनको भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो कथा का जो रस है वो विरस हो जाता है। तो लीला कथा जो सुनने में समुत्सुक हो, जिनका मन नया नया आनंद प्राप्त करता हो, उबता न हो, जो ये चाहते हूं कि लाख लाख कान हो जाएं और दिन रात बहुत बड़े हो जाएं, केवल सुनते ही रहें, उनके सामने ये लीला कहनी चाहिए। तो परीक्षित जी बोले कि तुम पर श्री कृष्ण की अपरिसीम कृपा है, तो तुम ही अधिकारी हो। बिना अधिकारी के कह नहीं, तुम अधिकारी हो तो अब तुम्हें हम कृष्ण की लीला कथा सुनाते हैं, तुम श्रवण करो। ये महाभाग और भागवतोत्तम, इस पर तो कई पेज हैं और इसमें महाभाग और भागवतोत्तम ये दो विशेषण जो संबोधन में दिए सुखदेव जी महाराज ने, इससे लीला कथा श्रवण के अधिकारी का निरूपण किया।